धावा कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जया गोपी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजनाय यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। 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 जय जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारका धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। भागवत धर्म की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज। All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 26वां अध्याय श्लोक नंबर 19 से लेकर 26 तक के श्लोकों पे हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ 19 श्लोक को हम दोहराएंगे। एक मिनट, किधर गया? जस्ट 25, 26, 26, यस प्रभु, या शांत्ययन शांत्यवयन श्लक्षणया वाचा हृदयेन विधूयत प्रेयस्य स्नेह संरम्भ लिंगम आत्मनि न अभ्यगात। सांत्वयन श्लक्षणया वाचा हृदयेन विधूयत प्रेयस्य स्नेह संरम्भ लिंगम आत्मनि नाभ्यगात। सांत्वयन श्लक्षणाय वाचा हृदयेन विधूयत प्रेयस्य स्नेह संरम्भ लिंगम आत्मनि नाभ्यगात। सांत्वयन श्लक्षणाय वाचा हृदयेन विधूयत प्रेयस्य स्नेह संरम्भ लिंगम आत्मनि नाभ्यगात। हृदयेन विधूयत माताजी एनीवन वांट्स टू सी सांत्वयन समझाते हुए लक्षणया मीठे वाचा वचनों से हृदयेन हृदय से विधूयता अत्याधिक पछताते हुए प्रेयस्य अपनी प्रेयसी के स्नेह प्यार से संरम्भ क्रोध का लिंगम लक्षण आत्मनि हृदय में न नहीं अभ्यगात उठा। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था किंतु उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तात्पर्य, राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल चला गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने हेतु पश्चाताप करता है तो भवसागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग खुल जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम पांचवें स्कंद पांचवा अध्याय पांचवा श्लोक में कहा गया है, पराभवस्था वदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम्। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप करने में लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वो मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये श्रीमद् भागवतम का अध्याय का शीर्षक है इस श्लोक का। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो आगे के जो कुछ श्लोक हैं उसके सिर्फ हम अनुवाद पढ़ेंगे और ये इस अध्याय का 26वां श्लोक जो होगा वो अंतिम श्लोक है। चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और उसे अपनी गोद में बैठा कर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। राजा पुरंजन ने कहा, ये सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। हे तनवंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। ये प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तो तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि ये ब्राह्मण कुल का नहीं है तो उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। मैं मुरारीपू अर्थात श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदतापूर्वक विचरण नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे दंड देने हेतु तैयार हूँ। हे प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित देखा नहीं। मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति का स्नेह से रहित देखा नहीं। ना ही मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्राश्रों से सिक्त देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल ओठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया। अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। फिर भी मुझे अपना अंतरंग दास समझकर तुम्हें मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से बिद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उसे मिलना अस्वीकार कर देगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का ये चतुर स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना नामक 26वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुयैव च पवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। तो सब अतिथिगणों का स्वागत है आज के इस प्रभात श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो कई लोग आप पहली बार इस अध्याय के विषय में सुन रहे हैं, तो संक्षेप में हम बताएंगे क्या चल रहा है चर्चा। ये चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम का है और आज के इस श्लोक में आपने सुना कि एक पुरंजन और उसकी पत्नी पुरंजनी के इसके बीच में संवाद हो रहा है। तो कथा ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवतम से परिचित हैं, आपने सुना होगा। एक राजा था प्राचीन भविष्यत, बहुत ही संस्कारी था, धार्मिक भी था, लेकिन कर्मकांडी था। आप जानते हैं कर्मकांडी यानी शुद्ध भक्ति नहीं था, कुछ कर रहा था ऊंचे उद्देश्य, आगे ऐसा होगा स्वर्ग में जाएंगे वहाँ जाएंगे ऐसे, लेकिन धार्मिक तो था। उसने अपने लड़कों को भी तपस्या के लिए भेजा था, उसके जितने लड़के थे बोले जाओ ट्रेनिंग जाके ले लो, तपस्या करो, फिर बाद में गृहस्थ जीवन आज। तो नारद मुनि तो जानते थे, तो वो जो प्रचेता थे वो तो उनका तो उद्धार हो गया। तो नारद मुनि सोचने लगे, अरे बच्चों का पुत्रों का हो गया, ये पिता का क्या करें। तो इसलिए वो आ गए फिर से राजमहल। प्राचीनी भविष्यत जिसको लग रहा था कि वो सब कुछ सही कर रहा है, राजा है, धर्म कर रहा है और सब कुछ अच्छा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन एक जो सच्चा प्रचारक होता है, जो जीवन का सच्चा उद्देश्य जानता है, जिसको भक्ति से, भक्ति ही सिर्फ ऐसा है कि जो इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है, ये कर्म कांड, ये ज्ञान, ये अष्टांग, ये कुछ हद तक पहुंचा देगा, लेकिन संसार के बंधन में ही रहेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होता। एक जो दयावान एक प्रचारक होता है, तो वो आ गया प्रचिनी परिषद के पास। अभी जो इस विषय में लगा हुआ है, उसका ध्यान कैसे ले इस विषय में? देखो, जो एक प्रचारक होता है, उसके लिए सबसे बड़ा वरदान ही होता है कि जो बोल रहा है तो लोग सुन रहे हैं। अगर उसका ध्यान नहीं है तो प्रचारक कुछ नहीं कर सकता। तो नारद मुनि चाहते थे इसका कैसे मैं इसका अटेंशन ले लूं सच्चाई के बारे में। तो ये तो रानी, राजा, पति, पत्नी, ऐसे लोगों के बारे में परिचित है, तो ऐसा ही कुछ एक दृष्टांत देते हैं, कुछ ऐसे एक क्या बोलते हैं, उपमा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे, एक ऐसा राजा था पुरंजन, तो एक दिन वह ऐसे घूम रहा था ऐसे, तो उसका एक परिचय एक ऐसे औरत से हो गई, तो कैसे उसके आकर्षण में आ गया हो। और आज का जो श्लोक है, ये तो अभी बड़ी लंबी कथा है, तो आज का श्लोक ने आपने सुना कि वो किस तरह से एक दिन ये पुरंजन अपने पत्नी के साथ बहुत समय तक था, बहुत सालों तक था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, तो उसने अपने पत्नी को छोड़ दिया और जंगल चला गया और वहाँ पे शिकार करने लगा, थक गया, वापस आया। वापस आने के बाद देख रहा है कि अपनी पत्नी दिखाई नहीं दे रहे, पूछने लगा, अरे वो कहाँ है? जब उनको बताया गया, अरे वो तो वहाँ पे लेटी है। तो इस हालत में देखा तभी वो बोलने लगा ऐसा। तो ये थोड़ा समझने के लिए, अरे इसका क्या है, हमारे लिए क्या है, हम क्या सीखेंगे इसे? तो प्रभुपाद हमारे आचार्यगण बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, लेकिन ये समझे कि एक धर्म पत्नी जो होती है, उसे श्रेष्ठ बुद्धि के साथ तुलना किया, क्योंकि घर में जो कुछ भी संस्कार होता है, पुरुष लोगों की भी जरूरत है, लेकिन करते हैं गृहिणी। पुरुष तो बाहर रहते हैं, काम करने में लगे रहते हैं, घर का जो कुछ भी होता है अगर वो करते हैं तो पति के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये जो पुरंजनी है, उसको प्रभुपाद एक बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ है शास्त्र का ज्ञान, उसके संपर्क में अगर नहीं आते हैं तो हमारा जीवन विचलित होता है और ऐसे कार्य में लग जाते हैं, जीवन का लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इसलिए एक गृहिणी का जो एक रोल है, उसके ऊपर कई ऐसे चर्चा किया गया। ऐसे तो लोग, अरे तेरा तो विवाह हो रहा है, अभी तेरा पतन हो जाएगा, और बहुत सारे जोक्स होते हैं, है ना, पति पत्नी के बारे में, और खास करके पत्नी के बारे में बहुत ये किया जाता है कि अरे अभी फंस गया, अभी ऐसा है, अभी ऐसा होगा। लेकिन भागवतम में पत्नी के बारे में ऐसे स्तर पर रखा है कि उनमें इतनी शक्ति है कि पूरा एक संसार का दिशा को बदल सकती है। कैसा लग रहा है आपको सुन के? तो भागवतम में बता रहे। तो इस संदर्भ में तो ये जो प्रचारक है, अगर किसी को प्रचार कर रहा है तो किस तरह से इसके, क्योंकि जो एक बार नशा लग गया है भौतिक संसार का, भोगवाद का, इतना आसान नहीं है। तो वो व्यक्ति खाली यही सोचता है कि बस यही है जीवन में, और कुछ है ही नहीं, अभी मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। अगर हम कुछ भी बोलेंगे, अरे ये छोड़ना पड़ेगा, अरे वो सुन के डर जाएगा, अरे ये छोड़ना पड़े, अरे मैं जीऊँगा कैसे फिर? तो ऐसे स्थिति में किसी का ध्यान लेना इतना आसान नहीं। हाँ, कई बार हम इस ऐसे संदर्भ में प्रभुपाद को भूल ही नहीं सकते। आप सोचिए प्रभुपाद ने क्या है, कौन से स्थान, कहाँ जाके, कैसे लोगों के बीच। तो कई ऐसे उदाहरण है, प्रभुपाद के सामने एक बार ऐसा व्यक्ति आया था, और वो था कार रेस ड्राइवर, तो प्रभुपाद उसके साथ मिल गए, सब बोलने लगे, हाँ मुझे भी पसंद है, हाँ ड्राइविंग कैसे होता है, ड्राइविंग कैसे गाड़ी चलता है, ऐसा स्पीड में जाते हैं, क्या होता है ऐसा। कई मिनटों तक यही भक्त लोग, ऋषि लोग सुन रहे, प्रभुपाद क्या प्रजल्प कर रहे हैं, क्या उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक ऐसा संदर्भ आया, तो जब ये ऐसा हो जाते तो डर तो लगता होगा ना, हाँ डर तो लगता है, तो पकड़ लिया उसको। डर लगता है, फिर उस डर से लेके उन्होंने उसको ऐसे स्तर पर लेके आया कि डर क्या होता है। तो ऐसे एक प्रचारक, इसी तरह से नारद मुनि एक इस तरह के प्रचारक थे, वो ये कथा प्राचीन परिषद को बता रहे हैं। तो हमने अनुवाद सब श्लोकों का अनुवाद बता दिया कि शुरुआत में वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक जब वो जाके अपने पत्नी के पैर छूने लगता है तो उसको गुरु के साथ किया है कि किस तरह से एक व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं अज्ञान से बाहर हो, कितना नम्र होना चाहिए उसको, मैं नहीं जानता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तुम बताओ। और उसके बाद हाँ, और ये भी तैयार होना चाहिए कि अगर कोई उसे डांटता है तो क्रोधित नहीं होना चाहिए, अगर वो चाहता है ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना है, और रही नहीं कि वो कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए, कोई भी मुश्किलें समस्या आएगी और क्रोधित नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे एक लक्षण बताए कि, और ये भी वो पूछने लगता है कि क्या मैंने धर्म की रक्षा किया नहीं है, किसी ने कुछ तुम्हें कुछ अपराध किया, मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, ये सब लक्षण होना चाहिए एक साधक के। तो ये यहाँ पे पुरंजन इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है अपने पत्नी से। हाँ, और ये भी कई बार अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो उस जैसे अगर एक पत्नी भी हो, बहुत सुंदर भी हो दिखने में, लेकिन अगर भक्ति के लक्षण नहीं है, अगर वैसे गुण नहीं है जो बाहर से नहीं दिखाए थे, तो फिर उसकी खूबसूरती की कोई मतलब नहीं। तो इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये पुरंजन पुरुष स्त्री का आकर्षण संबंध थोड़ा समझ में आएगा पर्चिनी परिषद को, इसलिए इसका उदाहरण दे। कई बार ये भी उदाहरण दिया जाता है थोड़ा समझाने की, ये थोड़ा आसान है, ये जो दृष्टांत थोड़ा आसान है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि प्राचीनी परिषद धार्मिक था, ऐसा नहीं कि वो कोई अज्ञानी एकदम कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कर्मकांडी था, तो नारद मुनि को बर्दाश्त नहीं होता इसको कर्मकांडी से कैसे मैं मुक्त करूं। तो एक साधारण हम हमेशा कभी हमारे सामान्य जन लोगों के बीच में प्रचार करते हैं तो कभी ये उदाहरण देते, एक राजा था, उसके चार पत्नियां थी, एक पत्नी ऐसी थी वो जो कुछ भी मांगती थी उसको दे देता था, कुछ भी मांगा, आज उसने ये मांगा, आज ये मांगा, कल वो मांगा, सब कुछ उसको देता था। दूसरी पत्नी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और कहीं भी वो जाता था तो उसके चार पत्नियां थी, हाँ, तो दूसरी पत्नी को कभी भी बाहर कहीं जाता तो लेके जाता था और लोगों को दिखाता था ये मेरी पत्नी है, क्योंकि अगर पत्नी खूबसूरत है तो दिखाने जैसा है तो दिखाएगी ना, तो उसमें उसको एक लग रहा था कि मेरे पास कुछ विशेष है। और तीसरी पत्नी थी, जब भी कुछ समस्या होता था तो उसके पास जाता था पूछने के लिए, अरे तुम्हारा ये कोई भी सलाह लेने के लिए। चौथी पत्नी थी, उसकी ओर उसने ध्यान दिया ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पूछा नहीं, तुम कैसी हो, क्या तुम्हारी, मैं तेरी तुम्हारे लिए कोई सेवा कर सकता हूँ, दिया नहीं। तो काल के प्रभाव से ऐसे हुआ कि राजा को एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई, तो वैद्य ने आके कहा कि बस खत्म, अभी इसका कोई इलाज नहीं है, समय आ गया, समय आ गया, कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर उसने क्या करा, अभी तो मैंने जाना है, तो अभी प्रिय कौन है, यही पत्नियां ही उसकी प्रिय है, तो नंबर एक पत्नी को बुलाया उसने, जो जिसके लिए उसने जो कुछ मांगा वो दे रहे थे, तो उसको बुलाया, देखो ऐसा ऐसा है, अभी मैं मुझे तो जाना है, मैं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ आओगी ना। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, जैसे आप चले जाएंगे तो मैं तुरंत आपसे अलग हो जाऊँ, मेरा तो कोई है ही नहीं मतलब, फिर मैं तो आ ही नहीं सकती तुम्हारे साथ। तो बहुत निराश हो गया, अरे इसके लिए तो मैंने सब कुछ किया है, जो कुछ मांगा मैंने दिया है इसको, तो ठीक है। तो दूसरी को बुलाया, दूसरी कौन थी, बहुत ही खूबसूरत आकर्षित, उसको पूछा देखो ऐसा ऐसा हुआ है, वैद्यों ने कहा कि मेरा समय आ गया, मुझे जाना है, तुम तो जरूर मेरे साथ आओगी, अरे मैं तुम्हारे साथ आओगी, मैं तो जैसे तुम चले जाओ किसी और के साथ चले जाऊंगी। माधवन प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। ये तो दर्द उसको बहुत बुरा लगा रहे, ये तो ये कैसे हुआ है। तो फिर उसने तीसरी को बुलाया। तीसरी वो थी जिससे पास हमेशा जाता था सलाह लेने, कुछ भी समस्या होती तो उससे पूछा, देख ऐसा ऐसा आया है, वैद्य ने कहा है कि मुझे जाना है, तो तुम तो आओगे नहीं मेरे साथ। मैं कैसे आऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कुछ दूर तक आ जाऊँगी तुम्हारे साथ, उसके बाद मैं नहीं आती। तो फिर कोई नहीं आएगा मेरे साथ, तो फिर कौन आएगा मेरे साथ। तो एक आवाज़ बहुत धीमी आवाज़ आई थी, बहुत कमज़ोर थी, उसने आवाज़ दिया, राजा मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। वो कौन थी, वो चौथी पत्नी जिसकी ओर उसने कभी ध्यान दिया ही नहीं, पूछा नहीं तू खाना खाई कि नहीं खाई, तू कैसी हो, क्या है। तो आपको क्या लग रहा है कथा किस लिए बताया जा रहा है आपको, बहुत भक्तों ने तो ये सुना है, कोई नया नहीं है, लेकिन जो नए हैं हमारे अतिथिगण बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ही गंभीर विषय है। जो पहली पत्नी थी, जिस जो कुछ भी मांगा उसने उसको दिया है, वो है हमारा शरीर। हम शरीर के लिए जो भी इंद्रियों के द्वारा जो भी चाहते हैं हम सब कुछ करते हैं, पूरा मेहनत इतना करते हैं कि ताकि शरीर की देखभाल अच्छी करना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए शरीर एक माध्यम मात्र है हमारे लिए। तो जब ही, और ये राजा कौन है, ये आत्मा है। तो जैसे ही आत्मा अलग हो गया वो शरीर कुछ काम का नहीं। लेकिन दूसरी पत्नी कौन थी, बहुत आकर्षित थी, हाँ, और दूसरों को दिखाता था वो, और उसने क्या जवाब दिया, मैं तुम जैसे चले जाओगे मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी। बहुत ही दर्दनाक है, हमारी संपत्ति, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बैंक के पैसे, ये है कि नहीं, हम दिखाते हैं कि नहीं यार मेरे पास है इतना, वही तो आकर्षित लगता है। लेकिन जैसे ही हम उसे, शरीर से आत्मा अलग हो गई, उसके साथ संबंधित सब कुछ, और वो किसी और का हो जाता है ना, हो सकते हैं अपने बच्चों का, परिवार का, किसी और। तो तीसरी थी हमारे, जिसे वो हमेशा सलाह लेने जाता था, वो है हमारे रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जिनके पास हम जाते हैं सलाह लेने के लिए। लेकिन उसने क्या जवाब दिया तीसरी पत्नी ने, मैं कुछ देर तक आऊँगी तुम्हारे साथ, यानी स्मशान भूमि तक आऊँगी, उसके बाद तुम्हें आगे अकेले जाना है। अभी रह गया चौथी पत्नी, जो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, वो है धर्म। अगर हमने धर्म का पालन किया है तो धर्म हमें ऐसे समय में रक्षा करने के लिए आएगा, सिर्फ धर्म ही आएगा। कई बार पूछा जाता है ना क्या होगा, तो इस तरह वो बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन उसने आवाज़ दिया कि मैं आऊँगी, लेकिन बहुत कमज़ोर थी। तो अगर वो बहुत ही अच्छे स्वस्थ रहती तो राजाज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो अपने आगे की गति के लिए वो बहुत उत्साह से आगे बढ़ता था। तो ये एक दृष्टांत है। तो उससे संबंधित ही ये भी राजा रानी की कहानी है। पुरंजनी अपने पत्नी से, तो यहाँ खास करके पुरंजनी को बताया गया कि वो हमारे धर्म, बुद्धि, हाँ, शास्त्र का ज्ञान, गुरु आश्रय, भक्तों का संग, भक्ति के कार्य, उसके प्रतीक। लेकिन उससे अगर हम अलग जीना चाहते हैं, जैसे ये पुरंजन के साथ हुआ, कुछ समय के लिए अलग हो गया, वो गया थोड़ा मैं चले जाता हूँ बाहर, तो कहाँ गया वो, शिकार के लिए। शिकार से आने के बाद उसको लगा कि मैंने गलती किया है। तो इसी तरह से जब भक्तों के संग में हैं तो कुछ उत्साह है, भक्तों के संग में नहीं है तो हमारे सब कुछ निकल जाता है, उत्साह भी निकल जाता है, और ऐसे चीज़ सब आकर्षित होने लगते हैं। जैसे पुरंजन को लगा कि मैं शिकार करना ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक संक्षेप में ये कथा सिर्फ बता रहे हैं हम, कि ये नहीं है कि सिर्फ कहीं साल पहले जमाने में हुआ है और इसका आज के दिन कुछ है क्या इसमें। तो सच तो यह है कि ये सब हर एक जो बद्ध जीव है हम जो इस संसार में जुड़े हुए हैं और यहाँ के हर एक चीज़ ऐसे आकर्षित होते हैं हमें, तो इससे हम अलग हो जाते हैं। इससे हमारा जो अच्छे गुण होना चाहिए वो सब चले जाते हैं। और अंतिम श्लोक में जो 26वां श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब ही एक व्यक्ति जीव और उसका बुद्धि सही तरह से मिला हुआ है, बुद्धि का अर्थ है धर्म की बुद्धि, टेक्नोलॉजी बुद्धि नहीं, वो भी एक बुद्धि है लेकिन भौतिक है, लेकिन ये बुद्धि के साथ उसका मिलन होता है तो उसमें तो फिर आनंद ही आनंद है। ये प्रभुपाद इसके तात्पर्य बताते हैं, ये अंतिम श्लोक है इसको। तो इस संदर्भ में एक याद आ रही है मुझे, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा आज के इस श्लोक में हम इसमें चर्चा करेंगे। कुछ ही दिन पहले विजयदशमी हुआ, रावण के 10 सर थे, इसका मतलब बुद्धि ज़्यादा होना चाहिए, 10 सर थे लेकिन 10 सर होने के बावजूद उसकी बुद्धि बहुत दूसरे कार्य में होगा, लेकिन कोई उसको सलाह दे रहे थे, 10 बार उसको मिला वार्निंग, मिलने के बाद भी उसको नहीं गया अंदर, तो हमें लगा अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन इसी तरह से संसार की आसक्तियाँ जब एकदम तीव्र हो जाती हैं, हमारे नाम अपराध हम जप करते हैं तो उसमें 10वां अपराध क्या है, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर हियरिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट। तो हिंदी में यानी आसक्ति का ये कारण होता है जो हम अच्छे ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आसक्ति बहुत तीव्र है। तो आप सब जानते हैं कि पहला वार्निंग जब रावण को पता चला कि वैसे जनस्थान में 14,000 लोगों का एक साथ वध हो गया, ऐसे सुना कि कोई वनवासी कोई मनुष्य शरीर में है लेकिन इतना शक्ति है, तो उसने आके मारिच से पूछा, पहला ये उसका पहला वार्निंग था, मारिच से आके पूछा मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, तो थोड़ा सीता को हम लोग अलग करते हैं ताकि इसकी शक्ति कम हो जाए। लेकिन याद रखना तभी रावण के हृदय में कुछ काम भावना नहीं थी सीता के लिए, वो सिर्फ राम के शक्ति का कमज़ोर करना चाहता था। लेकिन जब सुर्पनखा आके बताती है, सुर्पनखा को मालूम था, सुर्पनखा का क्या बेइज्जती हो गई थी, नाक कट गया था, तो उसे मालूम था कि मेरे भाई का कमज़ोरी क्या है, तो उसने सीता के बारे में ऐसे बताने लगा तो रावण को लगा कि सीता सिर्फ मेरी होना चाहिए और हो ही नहीं सकती, तो फिर से मारिच के पास गया और इस बार कहा कि तुम अगर मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारिच ने बहुत समझाया, देख मैंने राम की शक्ति के सामने, मैं भी असुर हूँ लेकिन छोड़ दिया, मैं अभी साधु बन के जंगल में रहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये कौन है बेवकूफ़ तुम्हें ये आइडिया दिया है राम को बताने, ये रावण को बता, तुम्हें उसे जाके दंड देना चाहिए, तुम्हारे मृत्यु के लिए तुम आह्वान कर रहे हो। नहीं गया। फिर दूसरी, अभी अपहरण तो कर दिया उसने, हो गया। हनुमान आए, आप जानते हैं हनुमान सीता का उनको देख लिया, फिर हनुमान चाहते थे कि रावण कौन है मैं देखना चाहता हूं, तो रावण के सामने आए और रावण क्रोधित हो गया, इसको मार डालो, विभीषण ने कहे नहीं मार नहीं सकते ये तो धूत बोल के आया, तो उसके पूछ को जला दो, और हनुमान के पूछ जलाने से उसने तो लंका को जला दिया, आधा लंका जल गया और जलते समय उसने खुद के बोला रावण देख मैं अकेला ऐसा हूँ आया हूँ, मेरे से ज़्यादा इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ खड़े उधर सागर के वहाँ, तू सिर्फ सीता को रिहा कर दे कुछ नहीं होगा, और उसने जला दिया। तो इसलिए रावण को थोड़ा डाउट आ गया, इसको लगा कुछ तो है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसने बहुत बड़ा एक मीटिंग बुलाया तुरंत, और मीटिंग बुलाने के कहा देखो मैं कोई ऐसा साधारण राजा नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की सलाह लेना चाहता हूँ क्या करना चाहिए, इसमें कुछ गंभीर विषय है। तो उसके पास साथ में जो लोग थे, अरे रावण तू तो इंदिरा की पराजय कर रहा था, ये क्या, ये वानर अकेला आया था और सडनली हमें अकस्मात आ गया, इसलिए हम कुछ करें, आगे फिर से अगर आएगा तो क्या वो पूरे सेना को हम, मैं अकेला जाके मार सकता, तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मैं अकेला जाके मार सकता, कुछ भी सलाह दो। लेकिन एक उसने बोला कि एक सलाह मत देना, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, सीता को रिहा करने का नहीं बोलने का। तो फिर कुंभकर्ण भी थे वहां पे, तो कुंभकर्ण ने पूछा तुमने जब ही, आज तुम पूछ रहे हो हमारे से, लेकिन जब सीता का अपहरण किया तभी पूछा था हमारे से करना चाहे कि नहीं। तो सब बहुत सारे लोग थे, उसमें से विभीषण जो है वो तो धर्म का प्रतीक है, उसने कहा कि ये लोग जो बोल रहे हैं तुम्हारे ये चिंतक नहीं है, तुमने गले में जहरीला नाक पहना के रखे हो और ये बहुत जहरीला है, तुम्हें मार, तुम्हें ही नहीं मारेगा, पूरे तुम्हारे वंशज को नाश कर देगा, बेवकूफ है छोड़ दो। ये सुन के रावण और भी क्रोधित हो गया, विभीषण ने जाके अपना सर रख दिया, बोलते ही चाहे तो मुझे इस पोजीशन से हटा दो, लेकिन मैं जो आदेश, मैं जो एक सलाह दे रहा हूं उसे तिरस्कार मत करना। तो रावण ने उसकी जो मुकुट है उसको लात मार दी। तो विभीषण सगा ठीक है अभी क्या करे, अभी इसको ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जो कामुक भावना जो थी इतनी तीव्र थी कि कुछ सुनने के लिए तैयार। फिर उसके बाद विभीषण तो चला गया, उसके बाद आते हैं कि कुछ ऐसे गुप्त घू लोगों को रावण ने भेजा, जाके पता लगाओ ये कौन लोग हैं क्या है। उनका नाम है सुरा और सरण। तो लोग जाके उनको विभीषण ने पहचान लिया, अरे ये तो रावण के लोग हैं। तो सब लोग मारने लगे उससे। तो राम ने कहा छोड़ दो उसको, क्या उसको जानना चाहते हैं सब दिखा दो उसको, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सब दिखा दिया उसको। लेकिन जाके रावण को बोलना अभी भी चांस है, सीता को रिहा कर दो, युद्ध की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो रावण को यह भी ये मिला। उसके बाद युद्ध के एक दिन पहले अंगद गया, आप जानते हैं वाली का पुत्र अंगद, एकदम जूनियर युवक लड़का, उम्र बहुत कम थी, वो सीधा जाके रावण के सामने खड़ा हो गया और बोलते हैं रावण तुम्हें बहुत घमंड है कि तुम्हारे जो सेनापति लोग ये युद्ध लड़ सकेंगे, मैं पैर दबा के रखा हूं, तुम्हारे सेनापतियों को बुलाओ और मेरे पैर को हटाओ। तो अंगद के पैर को वो लोग हिला नहीं सके, रावण को तभी भी नहीं समझ में आया, रावण खुद आया, अरे क्या है इसमें, मैं हटाता हूं, तू हाथ डाला हटाने के। तो अंगद ने अपना पैर खींच लिया, बोलते मैं तुम्हारे लिए इसलिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम राम की पैर पकड़ो। और अंगद ने उसके मुकुट को लात मारा रावण की। अभी अंगद और कहते देखो मैं तो एक छोटा सा वानर हूं और वहां पे करोड़ों वानर खड़े हैं, उधर ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर कई सीनियर्स होते हैं ना, सीनियर लोग होते हैं, तो यहाँ पे बताया है कि माल्यवान नाम का जो उसके रावण के बाप दादाओं की उम्र का, तो वो सब उनको उसको समझाते हैं, देख तू जो समझता है वानर, ये वानर नहीं है, ये जो हनुमान जो है ये तो वायु पुत्र है, उसमें शिव जी का भी शक्ति है, और ये सुग्रीव है ये तो सूर्य पुत्र है, और ये वायु, और जांबवान तो ब्रह्मा का पुत्र है, अंगदा तो इंद्र का, इस तरह अश्विनी कुमार ये जो मैंदा दिविदा नीला सबका वो बता देता है कौन माल्यवान। ये सुनने के बाद भी रावण को नहीं लगता है कि मैं एक के बाद एक एक बोलते जब कितने लोगों ने आके कहा। उसके बाद उसके ससुर जी यानी मंडोदरी के पिता वो कौन थे, वो तो आर्किटेक्ट थे लंका के, उन्होंने लंका बनाया था, तो उन्होंने कहा कि क्यों मेरे बेटी को विधवा बनाना चाहते हो तुम, क्यों इतने जिद्दी हो। और जो ये माया था ये उसके ससुर, जब हनुमान ने ध्वस्त किया कुछ ही एक ही दिन में उसने फिर से लंका को तैयार कर दी, यानी इतना शक्ति वाला व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम नहीं जानते हो तुम किसके साथ कर रहे हो, मूर्ख को पूरा वंश बिगड़ जाए, नहीं सुना। फिर कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का वध हुआ। अभी कुंभकर्ण का वध हुआ ये तो देख के सोचना चाहिए था, अरे कुंभकर्ण ऐसा व्यक्ति था, जब वो युद्ध के लिए बाहर आया श्रीलंका से तो गेट से बाहर नहीं आया, उसे गेट के ऊपर ऐसा पैर डाल दिया, ऐसा इतना विशाल शरीर उसका, उसका भी वध हो गया। फिर इसके बाद इंद्रजीत, जो रावण से भी ज्यादा शक्ति थी उसमें, एक बार रावण पराजय हुआ इंद्र से, लेकिन इंद्रजीत ने, उसके बेटे ने पराजय किया इंद्र, और खुद उसके पुत्र इंद्र ने बोला उसको, रावण ये भी बताया, पिता को बता दिया लास्ट एक दिन कि और छोड़ दे, पिताजी को बुला, उन नहीं सुना। जब इंद्रजीत का पराजय, मृत्यु हो गए, तो फिर मंडोदरी आ गई। तो मंडोदरी इज द 10th one, दसवा व्यक्ति आके उसको चेतावनी दे रही है, तुम्हारे ये काम भावना से तुम कितने लोग, तुम तो, तुम्हारी तो जो आग है वो तो मिटेगी नहीं, लेकिन ये आग में सब लोग मर जाएंगे। अभी मेरा बेटा चला गया, मैं क्या करूँ, मैं भी मर जाती हूँ, चले जाती हूँ। तो रावण जवाब देता है, देखो इतने लोग तो मर गए, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा, जब वो मिलेंगे मेरा मृत्यु के बाद, वो लोग पूछेंगे, अरे तुम्हें अगर सीता को रिहाई करना था तो पहले ही कर देता था ना, हम लोग सब मर गए। तो रावण को फिक्र थी कि आगे के उन लोगों से मिलने का, लेकिन यहाँ पे जो है जीवित है उन लोगों की नहीं छोड़ूंगा मैं। तो इस तरह एक कथा सुनने के लिए बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन ये बद्ध जीव का एक स्थिति है कि जिस चीज़ पे आसक्ति लग जाती है तो उसके बाद कहीं ऐसे विषय सुनते हैं, कथा तो लगता है कि बस ये कथा तो किसी और के लिए है, कहीं हमारे लिए क्या है शायद, लेकिन ये सब रावण की जो प्रवृत्ति है वो कलयुग में बताया गया है कि ये प्रवृत्ति हम सबके हृदय में है, और ये ऐसे संदर्भ में हम प्रभुपाद को फिर से याद दिला रहे हैं कि आप ही सोचिए, प्रभुपाद के वजह से हमें ये राधा दामोदर दामोदर लीला, ये किसको मालूम था, हम तो बचपन से ये चित्र को देखते आ रहे हैं, ये कोई नया चित्र नहीं है। लेकिन ये जो भक्ति प्रेम, हाँ, इसलिए प्रभुपाद को कहा गया कि पाश्चात्य देश में जो निर्विशेषवादी फैल रहा था, हाँ, तो वहाँ जाकर कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत सारे विषय थे, कितने उनको बताना, लोग बता रहे थे आप ऐसा कीजिए वैसे कीजिए, यहाँ लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज की, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के लिए इतना प्रेम था, इतना भक्ति था कि उस हृदय से वो प्रचार कर रहे थे और सबको देना चाहते थे। जैसे यहाँ पे नारद मुनि आते हैं प्राचीन परिषद के पास, तो यही नारद मुनि का ही हृदय, जो भक्ति के जो महाजन, सो प्रभुपाद कई बार प्रभुपाद के बाहर आके शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद हमारे बारे में लोग बोलते हैं कि हम लोग ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश समझते हैं ना, ब्रेन, हाँ, यानी लोग कुछ बहकाते हैं लोगों को। तो प्रभुपाद जी, हाँ ये सच है कि हमारे चेतना में इतनी गंदगी है ब्रेन में कि हम लोग उसको वॉश करते हैं, वॉश करना चाहते। एक कोर्ट केस हुआ तो उन्होंने कि हमें वकील की कोई ज़रूरत नहीं, तुम खुद चले जाओ और भागवतम को साथ में ले जाओ कोर्ट में, और भागवतम को लेके जाके उनको बताओ कि देखो हमारे इतने 18,000 श्लोक है, ये अध्याय यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये कोई नया नहीं है। तो इतना उनका विश्वास था कि लोगों को बताना है तो श्रद्धा से मैं यही बताऊंगा। तो ये प्रभुपाद की मानता था कि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। सो हरेक ऐसे विषय है हमारे, तो आज के दिन हम अगर कुछ सोचते हैं कि तो क्या करें हम, आपको हरि नाम तो है निश्चित, ये तो कलयुग का धर्म है, हरि नाम में शक्ति है, लेकिन एक विशेष बात है कि इस तरह के कथाओं को सुनना, खास करके भागवतम भगवद गीता, ये बहुत हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक कमजोरी है। सब लोग धार्मिक हैं, सब लोग श्रद्धा है, लेकिन एक कमजोरी है कि धर्म शास्त्र के ऊपर ज्यादा उतना नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। एक बार एक प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, मैं तो भगवद गीता तो 45 मिनट में मैं पूरा रट सकता हूँ, है क्या उतना, यानी ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है तुम रट सकते हो, 45 मिनट जी सकते हो भगवद गीता में जैसे लिखा है वैसे तो नहीं। तो इसलिए शास्त्र के बिना धर्म के नाम पे बहुत चलता है, लेकिन आज के इस विशेष इस अध्याय में हे प्रभुपाद ने जो एक इतिहास में जो किया है, ऐसे लोगों के सामने चले गए और उन लोगों को बताया जो पूरी तरह से काम भावना में इतने आसक्त थे, तो वहाँ पे एक छेद कर प्रवेश कर उनके हृदय में परिवर्तन लाना। हाँ, जैसे मैं जिस प्रांत से हूँ जो उड़पी का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आज के दिन भी लोग जो होते हैं ना, वो लोग तो देश तो छोड़ते नहीं हैं, बोलते अगर देश छोड़ के बाहर प्रचार करने जाएंगे तो उसको फिर वापस लेते नहीं, लेकिन यहाँ रहते हुए भी आप देखेंगे उनको, तो लोग जब भी वो मंदिर में आते हैं तो उनके सामने हम तो पूरी इज्जत करते हैं उनकी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितने खुद के इसके बारे में फिक्र होती है उनको। तो उनका शिष्य पहले से आता है और बोलता है कि चलो रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। क्यों बोलता है रास्ता छोड़ो? क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो किसी के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। कहा जाता है कि ये जो मन है हमारा, मन का शरीर से भी बाहर विस्तारित भाग होता है, एक 1.5 फीट भाग। तो किसी के हम संग में आते हैं अगर उसके मन में ऐसे अनर्थ है, वो उसे हम भी प्रभावित हो सकते, तो वो चाहते हैं कि नहीं नहीं तो परदेश जाने का सवाल ही नहीं आता। और ऐसे स्थिति में हम प्रभुपाद के बारे में सुन रहे हैं कि अकेले गए, ना कोई पहचान, ना कोई पैसा, ना कोई सहयोग, और बस इतना ही था कि उनकी विश्वास था। तो हम सब उनके कृपा के क्या बोलते हैं, वी आर द रेसिपियंट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हाँ, तो नारद मुनि ने जो किया वो आधुनिक जीवन में भी इतिहास में प्रभुपाद ने करके दिखाया। सो हम सब लोग भाग्यवान हैं। तो प्रभुपाद के दिया हुआ जो किताब है, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना है मैं मेरे किताब में लिखा। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज भी बैठे थे, पीछे बैठे थे एक राधानाथ महाराज, जो नहीं जानते वो प्रभुपाद के अनेक शिष्यों में एक शिष्य हैं। तो सवाल ये पूछा गया, सब लोग भक्तगण, सब लोग सिंसियर भक्त लोग बैठे थे सब लोग, तो ये सवाल किया कि श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए। तो सब ने सही जवाब दिया। अभी आप, मैं किसी से भी पूछूंगा आप जवाब देंगे ना, श्रद्धा बढ़ाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, हाँ ऐसे अनेक 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 सवाल होते। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज पीछे बैठे थे, उन्होंने हाथ उठाया ऐसे, तो सब लोग फिर घूम गए, बोलते अभी इतना सब जवाब दिया, अभी महाराज क्या जवाब देने वाले। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने जो तपस्या की है भागवतम अनुवाद करने के लिए, सिर्फ 2 घंटा सोते थे और पूरा रात बैठकर अनुवाद करते थे, इस कारण के लिए हमें पढ़ना चाहिए, और कोई कारण तो इस तरह ये जो धर्म पत्नी बोल के यहाँ पे उल्लेख किया गया है, तो उसका सिर्फ अर्थ यही है कि शास्त्र जो है, हाँ, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर तुम्हें पिता कौन है जानना है तो किससे पूछना पड़ेगा, मेरे पिता कौन है तो किससे पूछे, माँ से पूछे। तो उसी तरह से भगवान कौन है जानना है तो हम शास्त्र में लिखा है हमारा संबंध क्या है। तो इस तरह का जो संबंध है, जो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो लास्ट का जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि वेन जीव अपने बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल करता है तो उस मिलन में आनंद, तो वही सच्चा मिलन। तो ये है हमारे लिए आज की एक संदेश इस भागवत कथा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ माधवानंद प्रभु, यू वांट टू मेक एनी कमेंट्स ऑन दिस, बिकॉज आप तो कभी रहते नहीं है क्लास में, बहुत रह रहे हैं, बहुत हमारे बीच बहुत ही सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, तो कुछ एनी कमेंट्स, शुड वी आस्क फॉर एनी क्वेश्चंस। कई लोग हमारे अतिथि यहाँ पे, किसी का कोई सवाल है? एक सवाल हम, क्योंकि समय तो हो गया है, किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी का सवाल है कि
हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये प्रिंसिपल समझ गए। तो एक प्रश्न था कि अभी का जो जनरेशन है, अभी जो हमारे बच्चे हैं, तो उनका रैशनल बहुत अच्छा है, तो उनको क्या अच्छा क्या बुरा समझ रहा है, प्लस कुछ कुछ इस्कॉन से भी कनेक्टेड है, और इवन अदरवाइज बच्चों को अभी से पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मेरा विजन क्या है इन बहुत से चाइल्डहुड में। तो उनके लिए इस संदर्भ से क्या मैसेज है कि ऐसा तो नहीं, रावण एक्चुअली उसने डिप्लोमेसी भी नहीं यूज किया, कुछ नहीं, वो एक्चुअली टेम्परली सॉरी बोल के भी आगे चल सकता है, वी कैन यू नो दे कैन बी वेरियस एंगल्स टू इट, बट स्टिल प्रिंसिपल इज दैट कि वो लस्ट में पूरा डू गया था। बट आजकल का जनरेशन का रैशनल इतना अच्छा है कि दे कैन रिफ्रेन देयर सेंसेस फ्रॉम सर्टन थिंग्स टू अचीव समथिंग। जैसे बॉडी बिल्डिंग करना है तो वो कुछ चीज़ों से डाइटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, वो करते हैं वो लोग। तो आज के जनरेशन के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन के लिए आप क्या बोलना चाहोगे?
तो आप अपने खुद के बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, और या हमारा जो फाउंडेशनल नॉलेज है यह है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये तो हमारा फाउंडेशनल नॉलेज है। उसको अगर हम अलग करेंगे तो आगे कुछ पढ़ नहीं सकते। हमने ये नहीं बताया कि शरीर ज़रूरी नहीं है, शरीर का तो देखभाल करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं करना चाहिए जिससे शरीर को हानिकारक हो सकते, है ना। जो लोग बहुत ही दृढ़ता से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी आदतें भी होती है जो, तो यानी उसमें उनकी दृढ़ता नहीं है और शायद नहीं जानते हैं, जो भी है, कोई नशा करते हैं, ये करते हैं, हानिकारक है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन शरीर का देखभाल किए करने के बाद भी ये तो सब जानते हैं कि शरीर नाश्वर है, तो ये तो कॉमन सेंस है, पूछना चाहिए कि अगर सब कुछ नाश्वर है तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए ज़्यादा। शरीर है निश्चित, तो इसलिए मैंने बताया ये जो नॉलेज फाउंडेशनल नॉलेज है कि आत्मा है, आत्मा के बारे में दिलचस्पी जगाना ये सच्चे बड़ा ज्ञान है। और आप माता पिता होने के नाते आप पूछ रहे, ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के आधुनिक जीवन में। बच्चे फिलॉसफी जानते हैं लेकिन हाँ चैलेंजेस होते हैं घर में, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि माँ बाप का उदाहरण ही एक सोल्यूशन है उसके लिए। वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आगे वो बाहर की दुनिया में सब देखने जाएंगे क्या चल रहा है, हम उसको रोक नहीं सके, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया है घर में, माता पिता ने जो उनको दिया है, अभी नहीं स्वीकार करते लेकिन वो भूलेंगे नहीं उसको याद कर कर, क्योंकि बाहर देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने सुना है, तो उनको पता चल जाए, थोड़ा देर लगेगा। तो इसलिए अपने अपने बच्चे अपने अपने, हाँ, तो सिर्फ जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का एक उदाहरण, प्रचार की जरूरत नहीं, उदाहरण, बस यही मेरा जवाब है। एनीवन एल्स वांट्स टू कमेंट एज अ पेरेंटिंग? ज्यादा फिलॉसफी बोलने जाएगी तो दे गेट इरिटेटेड, डोंट टॉक फिलॉसफी, एग्जाम्पल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।